नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 20,000 करोड़ रुपए की 17वीं किस्त जारी करेंगे। भारत और अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण तथा उभरती प्रौद्योगिकी की पहल पर बातचीत हुई। बैठक में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों की प्रौद्योगिकी में साझेदारी के महत्व का उल्लेख किया गया। रेटिंग एजेंसी फिच ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान 7% से बढ़ाकर 7.2% किया। भारतीय फिल्म निर्माता विनोद गणात्रा को नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। और भाला फेंक विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा आज फिनलैंड में विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर प्रतियोगिता में भाग लेंगे। दोपहर समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचेंगे। वे वहां प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत करीब 9 करोड़ 26 लाख लाभार्थी किसानों को 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की 17वीं किस्त जारी करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
पूरी काशी अपने उस जन प्रतिनिधि के स्वागत का बेसब्री से इंतजार कर रही है जिसने लगातार तीसरी बार उनके दिलों को जीता है। प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद नरेंद्र मोदी का अपने संसदीय क्षेत्र का ये पहला दौरा है और भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनके जबरदस्त स्वागत के लिए पूरे शहर को सजा दिया है। शाम को काशी पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री मेहंदीगंज इलाके में पीएम किसान सम्मान सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन में वो किसानों से संवाद करने के साथ ही उनके उत्पाद भी देखेंगे। किसानों के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री ने पद संभालने के बाद सबसे पहले पीएम किसान निधि की 17वीं किस्त जारी करने को मंजूरी दी थी और अपने पहले बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में भी वो किसानों के मुद्दों को प्राथमिकता देते हुए नजर आएंगे। इसी कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री स्वयं सहायता समूहों की 30,000 से ज्यादा महिलाओं को कृषि सखी के रूप में प्रमाण पत्र भी प्रदान करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी।
आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर संत कुमार चौधरी ने कहा है कि सरकार की प्राथमिकता कृषि है।
किसान जो देश के आर्थिक व्यवस्था में अनाज उत्पादन के लिए जो अथक प्रयास करते हैं, इससे हमारी आर्थिक स्थिति सुधरती है। अन्न उत्पादन में जो आत्मनिर्भर बन गए हैं और प्रधानमंत्री जी द्वारा जो 6,000 की राशि सीधे खाते में जाता है, ये स्वागत योग्य है और इससे देश के किसान और ज्यादा प्रोत्साहित हो रहे हैं।
प्रधानमंत्री आज शाम को काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा और दर्शन करेंगे तथा दशाश्वमेध घाट में गंगा आरती देखेंगे। श्री मोदी कल बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भारत और अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण तथा उभरती हुई प्रौद्योगिकी आईसीईटी पर दोनों देशों की पहल के बारे में कल नई दिल्ली में एक बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सलिवन भी उपस्थित थे। बैठक में श्री डोभाल तथा श्री सलिवन ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी में साझेदारी को और आगे बढ़ाने पर अपने दृष्टिकोण साझा किए। इस बैठक में समान विचारधारा वाले देशों के साथ समन्वय बढ़ाकर प्राथमिकता वाले और प्रौद्योगिकी में उभरते क्षेत्रों की महत्वपूर्ण गतिविधियों के लिए सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। श्री सलिवन और श्री डोभाल ने इस बैठक के अलावा एक गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लिया जिसमें दोनों देशों के कुछ प्रमुख उद्योगपति और विचारक शामिल हुए। इस पहल के माध्यम से अमेरिका और भारत के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में निजी क्षेत्र के निवेश तथा साझेदारी को बढ़ावा दिया जा रहा है। दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने सरकारों, उद्योग तथा शिक्षा जगत के बीच बेहतर तरीके से कार्य करने का संकल्प लिया। देशों की आर्थिक स्थिति का आकलन करने वाली रेटिंग एजेंसी फिच ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी वृद्धि दर अनुमान 7% से बढ़ाकर 7.2% कर दिया है। उपभोक्ता खर्च में सुधार और निवेश में वृद्धि को देखते हुए पहले के अनुमान में संशोधन किया गया है। रेटिंग एजेंसी ने आज जारी अपनी वैश्विक आर्थिक आकलन रिपोर्ट में 2024 के लिए वैश्विक वृद्धि दर अनुमान को भी 2.4% से बढ़ाकर 2.6% किया है। रिपोर्ट के अनुसार यूरोपीय अर्थव्यवस्था में सुधार की संभावनाएं बढ़ी हैं। चीन को छोड़कर विश्व के उभरते बाजारों में घरेलू मांग में तेजी का रुख देखा जा रहा है। सरकार ने जम्मू कश्मीर में महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण लखनपुर से बसोहली बानी और बदरवाह डोडा तक नए राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण करेगा। ये प्राधिकरण 4,000 करोड़ रूपये की लागत से कठुआ एक्सप्रेस कॉरिडोर खंड पर अंडरपास और छतरकला सुरंग का काम भी पूरा करेगा। श्री सिंह ने बताया कि दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे कॉरिडोर का निर्माण कार्य पूरा होने वाला है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 जून को श्रीनगर में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वयं और समाज के लिए योग। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि इस वर्ष का विषय व्यक्तिगत और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने में योग की दोहरी भूमिका के महत्व को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में लाखों लोगों की उत्साहपूर्ण भागीदारी से समुदायों पर योग के गहरे प्रभाव का पता चलता है। इस अवसर पर उन्होंने दृष्टिबाधित लोगों की सुविधा के लिए ब्रेल लिपि में एक सामान्य योग प्रोटोकॉल पुस्तक का विमोचन किया। उन्होंने योग पर प्रोफेसर आयुष्मान कॉमिक का लोकार्पण भी किया। ये पुस्तक बच्चों को रुचि और मनोरंजन के साथ योग में सीखने तथा अभ्यास करने में सहायता करेगी।
इस बार का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में 21 जून को मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जनमानस के साथ कॉमन योग प्रोटोकॉल के अनुसार सामूहिक योगाभ्यास करेंगे। पहले प्रोफेसर आयुष्मान कॉमिक बुक, जिसे बच्चे सरल भाषा में और आकर्षक चित्रों के माध्यम से योग की शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। ब्रेल लिपि में कॉमन योग प्रोटोकॉल बुक, जो हमारे नेत्रहीन साथी अभी इस पुस्तक का उपयोग कर योग की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। लॉन्च योग की शैक्षिक दुनिया में एक बहुत बड़ा प्रयास है।
इस वर्ष भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक अनूठी पहल अंतरिक्ष के लिए योग का आयोजन कर रहा है। इसरो के सभी वैज्ञानिक और अधिकारी तथा गगनयान मिशन के सदस्य भी योग अभ्यास करके अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के वैश्विक अभियान में शामिल होंगे। योग के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी तथा स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने माई गॉव पोर्टल और माई भारत पोर्टल पर योगा टेक चैलेंज शुरू किया है। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज मैसूरू में राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का उद्घाटन किया। राज्यपाल ने कहा कि पिछले वर्ष जनवरी में राष्ट्रीय युवा महोत्सव के दौरान राज्य में एक विशाल योग कार्यक्रम आयोजित हुआ था, जिसने एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। उन्होंने कहा कि राज्य हर घर योग के माध्यम से कर्नाटक को भारत का अग्रणी योग साक्षर राज्य बनाने की दिशा में काम कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्राम पंचायत प्रमुखों से योग और मोटे अनाज के बारे में जागरूकता फैलाकर समग्र स्वास्थ्य को एक जन आंदोलन बनाने का आग्रह किया है। ग्राम प्रधानों को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि पंचायत परिसरों, विद्यालयों, आंगनबाड़ियों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर योग आधारित कार्यक्रमों का आयोजन लोगों तथा युवाओं को स्थायी और तनावमुक्त जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए ग्राम पंचायतों के सभी निवासियों को शुभकामनाएं देते हुए श्री मोदी ने इस आयोजन को योग के वैश्विक प्रभाव और लोगों के जीवन पर इसके सकारात्मक असर का प्रमाण बताया। उन्होंने कहा कि इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय स्वयं और समाज के लिए योग है। इससे एक स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण की दिशा में सरकार के प्रयासों को और बढ़ावा मिलेगा। वैश्विक ख्याति प्राप्त फिल्म निर्माता विनोद गनात्रा को फिल्मों में उनके योगदान के लिए दक्षिण अफ्रीका के प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार पाने वाले वे पहले भारतीय हैं। बाल सिनेमा में उल्लेखनीय योगदान के लिए 7वें नेल्सन मंडेला बाल फिल्म महोत्सव में उन्हें इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विनोद गनात्रा ने 400 से अधिक वृत्त चित्रों का निर्देशन और संपादन किया है। इसके अलावा उन्होंने बच्चों और युवाओं के लिए 25 बहुभाषी टीवी कार्यक्रम भी बनाए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। भाला फेंक में ओलंपिक और विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा आज फिनलैंड के तुर्कों में पावो नूर्मी स्टेडियम में विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर में भाग लेंगे। मौजूदा एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता और डायमंड लीग फाइनल विजेता को जर्मनी के मैक्स डेनिंग से चुनौती मिलेगी। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भीषण गर्मी से राहत मिलने का अनुमान व्यक्त किया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मौसम विभाग के वैज्ञानिक सोमा सेन रॉय ने कहा कि पश्चिमी विक्षोभ के अंतर्गत पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में आंधी आने से गर्मी कम होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि अगले दो तीन दिन पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी और देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा जारी रहेगी।
सीवियर हीट वेव रहने का उम्मीद का बिहार में, झारखंड में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में, मगर अलर्ट का लेवल थोड़ा अलग रहेगा। हमारा जो पहाड़ी क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट के बाद से येलो अलर्ट में चले जाएंगे। ये इसलिए क्योंकि एक पश्चिम विक्षोभ आ रही है, उसके चलते थोड़ा बादल होगा, बारिश का भी थोड़ा संभावना है। तो अगले 4 से 5 दिन तक टेम्परेचर थोड़ा लो रहेगा, जिसके चलते हमारे फोरकास्ट पीरियड में अभी हीट वेव का स्थिति थोड़ा कम होने का दिख रही है।
इस बीच हमारे संवाददाता ने बताया है, सिक्किम में सीमा सड़क संगठन और मंगन जिला प्रशासन ने हाल ही में आई बाढ़ के कारण चुंगथांग से आगे फंसे 500 से अधिक पर्यटकों को सफलतापूर्वक निकाल लिया है।
भारी वर्षा और भूस्खलन सहित प्रतिकूल मौसम की स्थिति का सामना करने के बावजूद अभियान धीरता और रणनीतिक समन्वय के साथ शुरू हुआ। बीआरओ की त्वरित प्रतिक्रिया और बाधित मार्गों की प्रभावी निकासी ने पर्यटकों को सुरक्षित स्थानों तक सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मंगन जिला अधिकारियों ने कहा कि यदि मौसम की स्थिति में सुधार होता है तो शेष पर्यटकों को हवाई मार्ग से निकाला जाएगा। इसे सुविधाजनक बनाने के लिए बागडोगरा में MI हेलीकॉप्टर स्टैंड बाय पर है। जिला प्रशासन के अनुसार लगातार बारिश और भूस्खलन के कारण मांगशिला, जंगू और मंगन क्लस्टर के तहत सभी स्कूल अगली सूचना तक बंद रहेंगे। आकाशवाणी के लिए गांतोक से मैं दिलीराम दुलाल।
उधर अरुणाचल प्रदेश में लगातार वर्षा जारी है। मूसलाधार वर्षा के कारण भूस्खलन और बाढ़ के कारण कई अंदरूनी इलाकों में सड़कें बाधित होने की खबर है। पापुम पारे जिले के दोईमुख इलाके में यातायात बाधित होने के कारण सवेरे से यात्री फंसे हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन राज्य में भारी वर्षा होने की संभावना जताई है, साथ ही अलग अलग स्थानों पर बिजली चमकने और अत्यधिक वर्षा होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। ग्रामीण जीवन में नवाचार को बढ़ावा देते हुए बदलाव और डिजिटल समावेशन के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने 5G इंटेलिजेंट विलेज और क्वांटम इनक्रिप्शन एल्गोरिदम के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। इसके लिए उद्योग, एमएसएमई, स्टार्टअप, शिक्षा जगत और उन सरकारी विभागों को आमंत्रित किया गया है जो दूरसंचार उत्पादों तथा समाधानों के प्रौद्योगिकी डिजाइन, विकास और वाणिज्यीकरण जैसे कार्यों में शामिल हैं। 5G इंटेलिजेंट विलेज पहल ग्रामीण समुदायों के उत्थान के लिए 5G प्रौद्योगिकी की बदलावकारी शक्ति का उपयोग करते हुए न्यायसंगत तकनीक की उन्नति की तत्काल आवश्यकता को पूरा करती है। विशेष रूप से भारत पर केंद्रित क्वांटम एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांतों का उपयोग करते हुए डिजिटल संचार चैनलों को सुरक्षित रखने के लिए एक अत्याधुनिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करेगी। श्रीलंका की नौसेना ने आज 4 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया। पुद्दुकोट्टई के मछुआरे नेदुनथीवो के पास मछली पकड़ रहे थे, तभी उन्हें श्रीलंकाई जल क्षेत्र में घुसने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। मछुआरों को पूछताछ के लिए कांके संथुराई बंदरगाह ले जाया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 20,000 करोड़ रुपए की 17वीं किस्त जारी करेंगे। भारत और अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण तथा उभरती प्रौद्योगिकी की पहल पर बातचीत हुई। बैठक में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों की प्रौद्योगिकी में साझेदारी के महत्व का उल्लेख किया गया। रेटिंग एजेंसी फिच ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान 7% से बढ़ाकर 7.2% किया। भारतीय फिल्म निर्माता विनोद गणात्रा को नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया और भाला फेंक विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा आज फिनलैंड में विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर प्रतियोगिता में भाग लेंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।